नमस्कार, आज हम एक बहुत ही विशेष पुस्तक महाशक्ति की लोक यात्रा पर चर्चा कर रहे हैं। ये डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने लिखी है और ब्रह्मवर्चस ने इसे संपादित किया है। ये पुस्तक गायत्री परिवार की जो संस्थापिका हैं, वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी, उनके जीवन पर आधारित है।
जी हाँ,
और हम इसके एक अहम अध्याय महाशक्ति में समाने का शिव संकंत इसे समझने की कोशिश करेंगे आज।
बिल्कुल,
ये अध्याय परम पूज्य गुरुदेव के अपने स्थूल शरीर मतलब देह को त्यागने के संकल्प और उस समय वंदनीय माता जी की क्या भूमिका रही, इस पर रोशनी डालता है।
जी, ये अध्याय असल में सिर्फ घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है, ये तो एक तरह से उन भावनाओं का संकलन है जब गुरुदेव सूक्ष्म रूप में जाने की तैयारी कर रहे थे और साथ ही मतलब वो युग निर्माण मिशन के भविष्य की नींव भी पक्की कर रहे थे।
हाँ, जैसे वो सूक्ष्मीकरण साधना हुई उसके बाद का जो समय था, गुरुदेव मिशन को एक नई दिशा नई ऊर्जा देने के लिए अथक परिश्रम कर रहे थे।
जी,
लगातार लिखना, साधना करना, कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देना, भविष्य की योजनाएं बनाना।
हाँ, वो गोष्ठियां करना।
हाँ,
उनकी गतिविधियां तेज से और तेज होती जा रही थीं।
सही।
और ये जो बढ़ती हुई रफ्तार थी ना, यही उनके जो सबसे करीबी लोग थे उनके लिए एक तरह का संकेत थे।
हाँ,
कि शायद वो अपनी जो दुनिया की लीला है इसे समेटने की तैयारी में है।
हाँ,
और इसमें जो बात ध्यान खींचती वो ये है कि सब कुछ कितनी योजना से हो रहा था।
हाँ बिल्कुल,
बिल्कुल सोचा समझा।
हाँ बिल्कुल। और वंदनीय माता जी, वो गुरुदेव के इस शिव संकल्प के बारे में जानती थीं, उन्हें पता था, वो पूरी तरह समर्पित भी थीं, लेकिन गुरुदेव को इतना ज्यादा श्रम करते देखकर उनका वो माँ वाला हृदय वो परेशान हो उठता था।
स्वाभाविक है।
एक किस्सा भी है ना पुस्तक में, जब बहुत ज्यादा लिखने की वजह से गुरुदेव की आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी,
जी हाँ।
फिर भी वो रुके नहीं, लिखते ही रहे। तो जब माता जी ने उनसे पूछा कि वो इतना परिश्रम क्यों कर रहे हैं, शरीर को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं, तो गुरुदेव का जो जवाब था वो उनके संकल्प को साफ दिखाता है।
क्या कहा उन्होंने?
उन्होंने कहा, दरअसल हम अपने जाने के पहले मिशन की गाड़ी को खूब जोर का धक्का लगा देना चाहते हैं।
अच्छा।
कि ये धक्का इतनी जोर से लगे कि मिशन सैकड़ों सालों तक आराम से चलता रहे।
वाह।
अपने लड़के केवल इसमें बैठकर स्टीयरिंग संभाले रहे, मतलब उनके उत्तराधिकारी।
जी, ये बात उनके मिशन के लिए उनका जो समर्पण था और भविष्य की जो उनकी सोच थी उसको बिल्कुल साफ कर देती है। और देखिए, इसी गहन आध्यात्मिक माहौल के बीच वंदनीय माता जी मिशन के काम तो देख ही रही थी, साथ साथ वो पारिवारिक जिम्मेदारियां भी निभा रही थी।
हाँ, ये संतुलन अद्भुत था।
जैसे उनकी पौत्री थी मंदाकिनी जी, जिन्हें गुड़िया कहते थे, उनका विवाह 1989 की माघ पूर्णिमा को हुआ, बिल्कुल सादगी से। तो ये उनके जीवन का वो पहलू भी दिखाता है, कर्तव्य और संतुलन।
बिल्कुल। और गुरुदेव बातों बातों में अक्सर संकेत देते रहते थे कि वो अब सूक्ष्म जगत के परिशोधन के लिए, मतलब वहां के काम के लिए, ये स्थूल शरीर छोड़ देंगे।
हाँ, उन्होंने कहा भी था।
हाँ, उन्होंने कहा, जैसे लोग अपना कुर्ता उतारते हैं वैसे ही मैं ये स्थूल शरीर उतार कर फेंक दूंगा। और जब किसी ने पूछा कि फिर आप कहाँ रहेंगे, तो उनका जवाब था, और कहा, सारा काम करते हुए मैं एक अंश से माता जी के भीतर रहूंगा।
ये बात बड़ी गहरी है।
हाँ, इसका क्या मतलब हो सकता है, ये सोचना वाला विषय है।
ये कहीं ना कहीं शक्ति के हस्तांतरण की ओर, चेतना के एक निरंतर प्रवाह की ओर इशारा करता है।
फिर देखिए, सन 1990 की वसंत पंचमी आई, तब उन्होंने एक पत्रक लिखा, महाकाल का संदेश। उसमें अपनी आगे की योजनाओं को और भी साफ कर दिया।
अच्छा।
और उसके ठीक बाद वो पूरी तरह से एकांत में चले गए।
ये एक और कदम था उनके संकल्प की तरफ।
जी हाँ बिल्कुल, एक और पक्का कदम। फिर अप्रैल 1990 में वंदनीय माता जी ने शांति कुंज में एक गोष्ठी हुई थी, वहां गुरुदेव के संकल्प को इशारों में समझाया।
जी।
और उन्होंने ये भी बताया कि गुरुदेव ने उनसे खास तौर पर कहा है कि उनके जाने के बाद वो सौभाग्य चिन्ह मतलब सिंदूर, उसका त्याग ना करें।
हाँ।
ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने पिछले जन्म में सारदा मणि के रूप में भी नहीं किया था।
हाँ, ये निर्देश महत्वपूर्ण है।
और कहा कि कुछ वर्षों तक वो मिशन का मार्गदर्शन करती रहे।
इस निर्देश का आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा माना गया वहाँ। जो लोग उपस्थित थे उन्होंने महसूस किया कि शायद महालक्ष्मी स्वरूप वंदनीय माता जी अगर सौभाग्य चिन्ह त्याग देंगी तो कहीं दुनिया ही सौभाग्यहीन न हो जाए।
हाँ, ये आध्यात्मिक प्रतीक और उनके पीछे जो गहरे संदेश होते हैं
जी, उनकी गंभीरता को दिखाता है ये।
और फिर वो दिन आ ही गया जो तारीख गुरुदेव ने पहले से तय की थी, गायत्री जयंती, यानी 2 जून 1990। उस दिन सुबह उन्होंने अपना स्थूल शरीर त्याग दिया।
और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय वंदनीय माताजी कहां थी? वो गुरुदेव के ही आदेश से प्रवचन मंच पर थी, अपना कर्तव्य पूरा कर रही थी।
हाँ, ये अविश्वसनीय है।
सब कुछ जानते हुए भी वो पूरी तरह शांत रहीं, अविचल। दिन भर के जो भी कार्यक्रम तय थे उन्होंने सब संतुलित रहकर पूरे किए, कोई विचलन नहीं,
बिल्कुल स्थिर।
शाम के समय गुरुदेव की देह अग्नि को समर्पित हुई और ऐसा माना गया कि उनका जो तेज था वो वंदनीय माता जी में समा गया, विलीन हो गया। वो इस भौतिक वियोग को सहते हुए एक नए और बहुत बड़े उत्तरदायित्व के लिए, एक महातप के लिए तैयार हुई।
तो ये अध्याय हमें यही दिखाता है कि कैसे परम पूज्य गुरुदेव ने पूरी चेतना के साथ एक योजना बनाकर अपनी इस लोक यात्रा का संवरण किया और कैसे वंदनीय माताजी ने अटूट निष्ठा और असीम धैर्य के साथ उनके इस संकल्प को पूरा करने में अपनी केंद्रीय भूमिका निभाई।
हाँ, ये सिर्फ एक शरीर छोड़ने की घटना भर नहीं थी, ये तो चेतना का एक स्तर से दूसरे स्तर में जाना था, शक्ति का हस्तांतरण था और नेतृत्व का भी एक बहुत व्यवस्थित हस्तांतरण था जिसमें वंदनीय माताजी धुरी थी, केंद्र थी।
सही कहा,
उनकी स्थिरता ने ही इस पूरे संक्रमण को सहज बनाया।
ये सब हमें सोचने पे मजबूर करता है ना कि क्या चेतना सच में इतनी स्वतंत्र है कि सिर्फ संकल्प करने भर से वो शरीर के बंधन को पार करके नए रूपों में, नए आयामों में काम कर सकती है।
जी, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर वाकई चिंतन किया जा सकता है, ये गहरा विषय है।